नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से युद्ध में नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में समाधान ढूंढने और शांति का मार्ग प्रशस्त करने की अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता नायाब सिंह ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन अफ्रीकी देशों की सप्ताह भर की यात्रा के अंतिम चरण में आज मालावी पहुंची। विदेश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी। और भारत के निशानेबाज अनंत जीत सिंह ने दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान बनाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जब देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसकी जड़ें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान से गहरी जुड़ी हुई है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने विश्व में अपील की कि समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने के बजाय भगवान बुद्ध के शिक्षाओं में ढूंढने, जो शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरणा लेकर देश के विकास में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के निर्णय पर श्री मोदी ने कहा कि भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धम्म संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि अधिधम्म दिवस हमें संदेश देता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करुणा और सद्भावना मूल मंत्र है। अभिधम्म दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को और विशेष रूप से भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायाब सिंह ने आज पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। श्री नायाब सिंह के साथ 13 विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। जिन विधायकों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई वे है अम्बाला छावनी से 7 बार के विधायक अनिल विज, इसराना के विधायक और राज्यसभा के पूर्व सदस्य कृष्णलाल पवार, बादशाहपुर के विधायक राव नरवीर सिंह, पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा, फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल, गोहाना के विधायक डॉ अरविंद कुमार शर्मा और रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा। राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधायक हैं विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, कुमाई आरती सिंह राव, राजेश नागर और गौरव गौतम। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, ललन सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, राम मोहन यादव तथा भाजपा और एनडीए के अनेक नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। झारखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाए जाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में होंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य में 20 नवम्बर को एक ही चरण में मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवम्बर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में आज मलावी पहुंच गई है। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मलावी की ये पहली यात्रा है। मलावी पहुंचने पर राष्ट्रपति का भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया। 3 दिन के मलावी प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तरीय बैठकें तथा भारतीय समुदाय के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि लोगों तक सही सूचना और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रसारण करना प्रसारकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। डॉ मुरुगन ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रसारण क्षेत्र में उभरते साधनों और प्रौद्योगिकियों पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व और प्रसारण की परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेख किया। सरकार ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में डिजिटल इंडिया नवाचार क्षेत्र पर एक मंडप की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल और उससे लगे दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी पर बना दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया और पुदुचेरी तथा नेल्लोर के बीच उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तटों को पार कर उत्तरी चेन्नई के निकट पहुंच गया। ये कमजोर होकर सुबह दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश पर स्थित हो गया। इसके अगले 12 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा और कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के बहुमत के निर्णय में असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6(a) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों की समस्या का राजनीतिक समाधान है। न्यायाधीश सूर्यकांत MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता थी। धारा 6(a) को असम समझौते के बाद 1985 में नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया था। इसमें असम के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया जिसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिक माना गया। धारा में यह भी कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए भारतीय मूल के लोगों के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक था। उन्हें 10 वर्ष तक भारत में रहने के बाद ही नागरिकता प्रदान की गई थी। हालांकि धारा 6(a) में 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख का जिक्र था और इसमें कहा गया कि इस तारीख के बाद आने वाले लोगों को अवैध अप्रवासी माना जाएगा। असम के कुछ स्वदेशी समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी और कहा कि इससे बांग्लादेश से आने वाले विदेशी अप्रवासियों की अवैध घुसपैठ को वैधता मिलती है। सरकार मलेशिया से ली गई अल्ट्रा इन्फोर्समेंट कंक्रीट तकनीक के जरिए पुल और मेट्रो निर्माण की लागत को 25% तक कम करने पर काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि बायोडीजल और वैकल्पिक ईंधन के निर्यात की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि 22 लाख करोड़ रुपए की लागत और लगभग सभी विश्व स्तरीय वाहनों की उपलब्धता के साथ भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। मंत्री ने आगे कहा कि ये उद्योग देश में लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराता है। 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 के दौरान दुनिया में मेथनॉल उत्पादन अनुप्रयोग और संबद्ध तकनीकी विकास से संबंधित परियोजनाओं उत्पादों और अनुसंधान तथा विकास के पहलों की प्रगति के बारे में चर्चा की जाएगी। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य विश्व में ऊर्जा क्षेत्र में मेथनॉल की भूमिका और हरित शिपिंग में कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल के उदय के बारे में जानकारी देना है। ISSF निशानेबाजी के विश्व कप के फाइनल में भारत के अनंतजीत सिंह ने नई दिल्ली में स्कीट फाइनल शॉटगन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अनंतजीत ने तीसरे स्थान को हासिल करने के लिए 50 में से 43 निशाने लगाए। अन्य मुख्य मुकाबलों में विमान कपूर पुरुषों और के ट्रैप फाइनल में खेलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ रामायण भगवान श्री राम की दिव्य गाथा को साथ मानव समाज को एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि मानवीय आदर्शों के अद्भुत उदाहरण रामायण में मिलते हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से आदि कवि द्वारा दिखाए गए आदर्शों के राह पर चलने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।